12 नवंबर दिन रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को आदर्श राठौर का नमस्कार। दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रकाश राज ने कहा, बेबाकी से बात रखने की वजह से बनाया जा रहा है निशाना।
All of us are witness. Wasn't Shahrukh Khan sidelined? Wasn't Amir Khan sidelined? Wasn't he removed from being an ambassador of certain things? Wasn't some of his commercial?
आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिलीपींस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात।
जो एशिया के और देश हैं सब चाहेंगे कि भारत और चीन जो है मिलकर आगे बढ़े, तो अमेरिका का सहयोग अगर मिलता है, कोई इनिशिएटिव होता है उनकी तरफ से कि क्वाड्रिलेटरल मीटिंग करी जाए, वो एशिया के लिए बहुत अच्छी नई पहल होगी।
बताएंगे राजस्थान में शिक्षा विभाग की पत्रिका को लेकर क्यों है विवाद, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रकाश राज ने कहा है कि अभिनेताओं को राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना नहीं चाहिए। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कमल हासन राजनीति में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के दौरे पर आज मनीला पहुंचे। मोदी आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान मोदी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। फिलीपींस के लिए रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि वो वहां पर बसे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमरीकी दूतावास के सामने सैकड़ों लोगों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया। दंगारोधी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। एशिया के दौरे पर निकले ट्रंप आसियान सम्मेलन में शिरकत करने मनीला पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में प्लेकार्ड थे जिन पर डंप ट्रंप और अमरीकी साम्राज्यवाद खत्म हो जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं कि ट्रंप फिलीपींस के लोगों के दोस्त नहीं हैं, वो युद्ध का समर्थन करते हैं और वो आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं। ये थे मनीला में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराकी सेना ने कहा है कि उन्होंने कथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपना आखिरी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ये युद्ध सीरिया की सीमा से सटे रावा शहर और उसके आसपास के इलाकों के लिए किया जाएगा। बीते सप्ताह इराकी सेना ने इस इलाके के एक महत्वपूर्ण शहर अल कैम को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। करबला के दौरे पर गए इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा कि दाएश यानी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान के कारण भारी मात्रा में धन और जीवन की हानि हुई है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को सुरक्षा शांति दें और उन्हें प्रगति के पथ पर ले जाएं। इस लड़ाई में हमारे लोगों ने अपने बेहतरीन युवा और पुरुष साथी खो दिए हैं जो अपनी सरजमीन को बचाते हुए शहीद हो गए। दाएश हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हुए भीतर घुस आया तो हमारे कई लोगों ने खुद को इस लड़ाई में झोंक दिया। दाएश ने इराकी शहरों में बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पहुंचाया है उसका आकलन करें तो ये नुकसान $100 अरब से भी अधिक होगा। ये थे इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के शब्द। रूसी एक्सट्रीम स्पोर्ट्समैन वालेरी रोजोव की मौत हो गई है। वालेरी रोजोव को बेस जंपिंग में अपने फ्री फॉल के रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। नेपाल सरकार का कहना है कि एवरेस्ट पर्वत शिखर पर 6,800 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद अमा डबलाम में फ्री फॉल की कोशिश के दौरान वो पहाड़ से टकरा गए। रोजोव दुनिया के 7 महाद्वीपों में मौजूद 7 सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों से बेस जंपिंग कर रहे थे। बेस जंपिंग में एक व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर या पुल से बिना किसी सहारे से नीचे कूदता है और फिर नीचे आने से पहले अपना पैराशूट या अपना कृत्रिम पंख खोल लेता है। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के बांगुई में एक संगीत समारोह में एक हमलावर ने ग्रेनेड फेंके। इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला शहर के मुस्लिम बहुल इलाके के नज़दीक एट द क्रॉसरोड्स ऑफ पीस नाम के एक कैफे में हुआ जहां एक स्थानीय संगीतकार के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बीते कुछ सालों में इस इलाके में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अपनी तरह के पहले बड़े अभियान के तहत उन्होंने 25 बेहद जरूरतमंद शरणार्थियों को लीबिया से पड़ोसी देश निजेर पहुंचाया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। अभी अभी खबर आई है कि राजस्थान के अलवर जिले में पिकअप गाड़ी में गायों के साथ जा रहे एक मुसलमान व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। इस वारदात में एक अन्य शख्स भी घायल हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नारायण बारेट। नारायण, क्या है जानकारी ताजा?
जानकारी ये मिली है कि भरतपुर जिले का उमर एक पिकअप गाड़ी में गायों के साथ निकला था और आज उसका शव पाया गया है। ऐसा अंदेशा है कि उसके गोली मारी गई है। उसके साथ एक ताहिर नाम का व्यक्ति घायल हुआ है जिसको हरियाणा में किसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मेयर बिरादरी के लोगों को सूचना मिलने के बाद अलवर में एकत्रित हुए, उन्होंने विरोध किया और नाराजगी जताई है। पुलिस का कहना है कि हत्या हुई है, कैसे हुई है, गोली लगी है या किसी और ने मारा है कहना मुश्किल है, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए शव को अलवर से जयपुर भेजा गया है। जो मेवात युवा संगठन इस पे कार्रवाई के लिए कर रहा है, उनके एक नेता सद्दाम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ऐसा परिजनों का कहना है कि गौशवक और पुलिस के मिली भगत के साथ इस व्यक्ति कथित तौर पर हत्या की गई है। और चूंकि उनकी नाराजगी इसलिए भी बढ़ जाती है कि कुछ माह पहले पहलू खां की इसी परिस्थितियों में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी।
जी शुक्रिया नारायण इस जानकारी के लिए। तो इस खबर पर अपडेट के लिए आप bbchindi.com पर नजर बनाए रख सकते हैं। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां पर अभिनेता प्रकाश राज आज पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान न आने पर सवाल उठाए हैं, तब से उनके विज्ञापनों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोग अपने विचार ना रख सकें। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
अभिनेता प्रकाश राज को सुनने से किसी को भी लगेगा कि वो बहुत गुस्से में है, लेकिन वो जो भी कहते हैं बड़े ठंडे दिमाग से कहते हैं। उन्होंने कुछ हफ्तों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट के जरिए सवाल पूछा था कि वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बारे में उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको इस मामले पर कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश राज को जवाब ट्रोल से मिला। उन्होंने कहा,
ऑल ऑफ अस आर विटनेस, नोबडी वांट्स टू स्पीक, आई एम नॉट द न्यू गाय बीइंग ट्रोल्ड। Everybody who questions is trolled. Wasn't Shahrukh Khan sidelined? Wasn't Amir Khan sidelined?
आपने ये देखा होगा कि किस तरह शाहरुख खान आमिर खान के कमर्शियल इश्तहारों को निकाला गया। वो कोशिश अभी हमारे साथ भी हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके वजह से हमें चोट पहुंच रही है। हम लोहे के बने हुए हैं। हमने एक कंपनी को कहा था कि वो चाहें तो हमारी डबिंग बंद कर दें, लेकिन उस कंपनी ने कहा कि वो हमारे साथ हैं। ये थे प्रकाश राज के शब्द। प्रकाश राज ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि ना तो वो किसी राजनीतिक पार्टी की तरफदारी करेंगे और ना ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। उनका ये भी मानना है कि अभिनेताओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ऐसा करना देश के हित में नहीं है। हालांकि वो कमला हसन के दोस्त हैं और रजनीकांत, पवन कल्याण जैसे अभिनेताओं की इज्जत करते हैं, वो उनको राजनीतिक तौर से कोई समर्थन नहीं देंगे। लेकिन आज देश में जिस तरह किसी की भी राय को धमकी से बंद करने की कोशिश की जा रही है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा,
स्टॉपिंग वॉइसेस वॉज नॉट देयर फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस, बट दिस टाइम वॉट एवर यू टॉक देयर इज अ प्रेजुडाइस ऑलरेडी एंड देयर इज एन एजेंडा बिहाइंड इट।
हां, पहले भी हमारे देश में मुंह बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा विचारधारा के कारण नहीं किया गया था। लेकिन आज जो हो रहा है वो पूर्वग्रह के लिए किया जा रहा है। देश में डर का माहौल बनाया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर लोगों को एक मौका मिला तो वो अपना फैसला बदलने के लिए तैयार हैं। सभी नहीं तो भी 20-30% तो अपना फैसला बदलना चाहेंगे। ये थे प्रकाश राज के शब्द। प्रकाश राज को दुख इसी बात का है कि आज किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है, बल्कि ये पूछा जाता है कि क्या ऐसा पहले नहीं हुआ था। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के 3 दिन के दौरे पर गए हैं। यहां वो आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ऐसे समय फिलीपींस पहुंचे हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यहां मौजूद हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात भी हो सकती है। कितने अहम है ये दोनों सम्मेलन भारत के लिए और डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कितनी अहम हो सकती है, ये जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक से।
ये आसियान इंडिया समिट जो है ये 15th एनिवर्सरी है एंड दिस वाज अ मेजर इनिशिएटिव टू बिल्ड अप जो हमने जो दोस्ती करी आसियान के देशों के साथ में और ऐसे समय में जबकि भारत की प्रगति जो है आर्थिक प्रगति थोड़ी तेज होनी शुरू हो गई थी लेकिन उनको पार्टनर्स और चाहिए थे क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में दक्षिण एशिया में जो हमारे ग्रुपिंग से सार्क वगैरह के तो वो ज्यादा चल नहीं पा रहे थे तो इसलिए जो है जब आसियान के साथ में ये बात बढ़ाई गई और उन्होंने बहुत वेलकम किया ये समिट लेवल इंटरेक्शन भी तो मेरे ख्याल से ये जो उनके 500 मिलियन लोग और हमारे करीब 1.5 बिलियन 1.25 बिलियन लोग जो है मिलकर और हमारा आपसी जो व्यापार है काफी तेजी से आगे बढ़ा तो मेरे ख्याल से काफी वैल्यू इसमें आ गई है रिलेशनशिप में और एशिया के मुल्कों में भी इस तरह की बात उठी कि खाली एक एशिया को आतंकवाद की दृष्टि से देखना जो है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से था या चीन की वजह से ये कि यहाँ पर जो है चीन का दबदबा हर जगह बना रहेगा तो आसियान के देशों ने भारत के साथ में समिट लेवल इंटरेक्शन बढ़ाया उस समय तो बहुत अच्छी बात थी। फिर ईस्ट एशिया समिट पे भी जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें काफी उस समय समर्थन किया कि ये ईस्ट एशिया समिट का प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए अपना आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में भी कोशिश करी कि एक रीजनल कोऑपरेशन कोई बनाया जाए इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो वो अभी बात चल रही है।
साथ ही प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं कितनी अहम होगी ये मुलाकात?
भारत के प्रधानमंत्री ऐसे समय में गए हैं जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप अभी वहीं होंगे और उन्होंने अभी हाल में बात करी है कि एक एशिया की नई डॉक्ट्रिन उन्होंने अडॉप्ट करने की बात की है अफगानिस्तान के जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कहा है कि रीजनल सॉल्यूशन वगैरह ढूंढना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि वो चीन की मदद भी ले रहे हैं उत्तर कोरिया के मसले को हल करने के लिए तो उसमें देखने में आया है कि चीन ने जो है जो आतंकवाद के मसले पर इतना ज्यादा आगे बढ़कर पाकिस्तान को और उनको सिखाना चाहिए था कि वो आतंकवाद में ज्यादा ना उनको समर्थन करें तो वो नहीं हो पाया था तो मेरे ख्याल से लगता यह है कि ये आपस में बात होगी तो शायद इसमें ये बात आगे बढ़ पाएगी कि इसमें भारत का भी चीन का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि अफगानिस्तान स्टेबल रहे एक तो और दूसरा जो एशिया के और देश हैं सब चाहेंगे कि भारत और चीन जो है मिलकर आगे बढ़े तो उसमें अमेरिका का सहयोग अगर मिलता है कोई इनिशिएटिव होता है उनकी तरफ से कि क्वाड्रिलेटरल मीटिंग करी जाए कि जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और भारत अगर कोई मिलकर इस तरह की बात सोचते हैं वो एशिया के लिए बहुत अच्छी नई पहल होगी और जो इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट बना है मैरीटाइम एरियाज में भी और भी सब डेवलपमेंट एरियाज में तो मैं सोचता हूँ कि ये भी अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ अगर भारतीय प्रधानमंत्री की बात हो पाती है तो ये मेरे ख्याल से एशिया के लिए एक अच्छी बात रहेगी।
ये थे भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जो बता रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। राजस्थान में शिक्षा विभाग की पत्रिका शिविरा में महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य के लिए चक्की पीसने जैसे घरेलू कामों का सहारा लेने की सीख दी गई है। महिला संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई है और शिक्षा संगठनों ने भी आपत्ति जाहिर की है। शिक्षा विभाग ने पत्रिका में छपी इन बातों को लेकर सफाई भी दी है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
शिक्षा विभाग की शिविरा पत्रिका में छपे लेख के मजमून ने भारी विवाद खड़ा कर दिया है। इस लेख में महिलाओं के लिए बेहतर सेहत के नुस्खे बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि घर में आटा चक्की चलाने से और घरेलू कामों से उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। महिला संगठनों ने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार महिलाओं को उस चूल्हा चौकी के दौर में वापस ले जाना चाहती है जहाँ से वे निकल कर आई है। महिला फेडरेशन की निशा सिद्धू कहती है ये दकियानुसी सोच है,
तार्किक नहीं है। निश्चित तौर पे वो जिससे बाहर निकल के आई हैं फिर उनको वहीं वापस धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये तो जिस तरह का सरकारें है वैसा ही माहौल वो वापस देने की औरतों को कोशिश कर रहे हैं। दकियानुसी विचार है तो ये सरासर उनकी सोच है और ये गलत है। दकियानुसी सोच कहा जा सकता है।
कभी राजस्थान में घर घर महिलाएं आटा चक्की चलाती थी और अनाज को पीसकर आटे में तब्दील कर देती थी लेकिन अब यह बीती बात है। विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल कहते हैं शिक्षा विभाग किस युग की बात कर रहा है।
21वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी का लेकर प्रकाशित करते हैं कि चक्की चलाने से महिला शिक्षक के स्वास्थ्य लाभ हो गए ये पूर्ण रूप से दक्षिणासुनी पूर्वापंथी विचार है। हम इसका विरोध करते हैं। हम बुलेट ट्रेन के युग में जा रहे हैं और अगर वो कहे तांगा गाड़ी में बैलगाड़ी में यात्रा करें तो वही प्रकार ये हुआ कि चक्की चलाने से स्वस्थ लाभ हो। तो ये इस प्रकार से जो विचार शिविर में प्रकाशित होते हैं उसको रोका जाना चाहिए।
शिक्षा विभाग की यह पत्रिका बहुत पुरानी है और हर माह इसकी हजारों प्रतियां शिक्षकों तक पहुंचती है। शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल कहते हैं, न तो ये विभाग की राय है और न ही सरकार की।
मैं ये मानता हूँ कि न तो विभाग का कोई इंटेंशन है, न गवर्नमेंट इसके प्रति कुछ कह रही है कि केवल स्त्रियों के लिए ही ये काम बने हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भाई अलग अलग फील्ड में लड़कियां और महिलाएं कई फील्ड में पुरुषों से बहुत अच्छा काम भी कर रही है। अपनी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल बेस्ड है। कोई काम को इन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कि केवल यही काम है जो केवल महिलाएं, तो उसमें ये लिखा हुआ है स्त्रियां घर में चक्की करना, पानी भरना, पोछे लगाना, रस्सी कूदना आदि सभी क्रियाविधियों या गतिविधियों से अच्छा व्यायाम कर सकती है टाइप कर सकती है, करना चाहिए या स्त्रियों के द्वारा सिर्फ यही किया जाना चाहिए टाइप की कोई लैंग्वेज नहीं है।
आटे की चाकी अब बीते युग की याद दिलाती है। अब वही चाकी या तो मुहावरों मिलती है या कबीर के दोहों में, लेकिन अब वही चाकी शिक्षा विभाग की पत्रिका में भी नमूदार हुई है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
30 सालों से भी ज्यादा वक्त से विभिन्न जन आंदोलनों से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर से BBC हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने बात की और पहला सवाल यही पूछा कि आप जब इतने लंबे समय से विभिन्न आंदोलनों से जुड़ी हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं कि क्या हासिल हुआ?
15,000 परिवारों को जमीन के साथ पुनर्वास केवल इसी बांध में मिला है, दुनिया के दूसरे किसी बांध में नहीं। और इस बांध का जो भी सच्चाई है उसको सामने लाने के बाद उन्हीं विस्थापितों के संघर्ष से हुई है, पर सबसे महत्व का मुद्दा मेरे ख्याल से कि नर्मदा के विस्थापितों के संघर्ष ने विस्थापन का मुद्दा और बांध, बड़े बांध और विकल्पों का मुद्दा राजनीतिक एजेंडा पर लाया। 1990 में डूब जाने वाला था एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो 214 किलोमीटर तक फैला है और आज भी वो जिंदा है। आज भी 40,000 परिवार करीबन डूब क्षेत्र में बसे हुए हैं, लड़ रहे हैं, सरकार युद्ध खेल रही है।
आप के बारे में एक छवि इस तरह की बनी है कि ये संघर्ष करती हैं, लड़ती हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करती हैं। इस तरह की एक छवि बन गई है कि मेधा पाटकर हर जहां पर भी अगर प्रोटेस्ट होगा मेधा पाटकर वहां मौजूद होंगी, ये आपका कन्विक्शन कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन क्या आम जनता जो है, जो अफेक्टेड लोग नहीं है, उन तक आप अपनी बात पहुंचा पाई?
मीडिया तक प्रोटेस्ट की बात पहुंचती है, जबकि दो प्रोटेस्टों के बीच कई सारे प्रक्रियाएं चलती है, न केवल लोगों को सशक्त करने की लेकिन हमारे अभ्यास की, जैसे नर्मदा का गुजरात में क्या असर है, क्या होगा, आज जो हम कह रहे थे वो सब सच्चाई में उतर के दिख रहा है। ये सब बातें तो आंदोलन ने ही उठाई और आंदोलन ने ये प्रक्रिया केवल रास्ते पर बैठकर तो नहीं की, हमने कोर्ट में केस लड़ी और एक नहीं, उस क्षेत्र के अवैध रेत खनन का मुद्दा हो, उस क्षेत्र के नहरग्रस्तों का मुद्दा हो और देश भर जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का निर्माण भी नर्मदा जैसे ही आंदोलनों के अगुवाही से हुआ है और ये समन्वय आज देश भर कई सारे मुद्दों पर, जो अन्याय के हैं, जो गैर बराबरी के हैं, जो सांप्रदायिकता जातिवाद के हैं, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पर ये सभी प्रक्रियाओं में कानूनी और मैदानी दोनों लड़त चलती है, संवाद भी होता है, संघर्ष भी होता है और रचनात्मक कार्य भी होता है। हमारी जीवन शालाओं से हजारों बच्चे आदिवासियों के पहले पीढ़ी के शिक्षित होकर निकले हैं। अब इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं होता जितना किसी उपवास धरने का होता है, तो हम नहीं, मीडिया इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदार होना चाहिए। और मुख्य धारा के मीडिया में अगर अवकाश नहीं है तो भी हमारे अपने माध्यम है जनता के साथ संवाद करने के लिए, नहीं तो 32 साल हम जिंदा भी नहीं रहते।
विस्थापन की बात आपने कही, शुरुआत में आपका मुद्दा था सरदार सरोवर बांध नहीं बनना चाहिए, फिर आपकी लड़ाई थी कि उसकी बांध की ऊंचाई बहुत नहीं बढ़नी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से आपको हार का मुख देखना पड़ा, सरकारों का एटीट्यूड ऐसा रहा चाहे वो कांग्रेस की है या BJP की सरकार है, आपको कहीं उनसे मदद नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए ये थोड़ी आधी अधूरी जानकारी पहुंचती है, समझे कि हम भी जिम्मेदार है संवाद और सही माध्यम पूर्ण रूप से इस्तेमाल न करने के लिए। सरदार सरोवर की जो सच्चाई हमने उजागर की है वो आज दिखाई दे रही है, न इसके 41,000 किलोमीटर लंबाई के नहरें बनी है, न ही गुजरात में आज नर्मदा जिंदा है जीवित है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से रोका नहीं लेकिन 4 साल रोका, और जो भी रोकते गए मनमोहन सिंह जी ने नहीं मंजूरी दी, ये मोदी जी का आज चुनाव प्रचार में आरोप है, क्यों नहीं दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह जी से 2006 में लिखित में लिया था और कई सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं जिसमें कहा गया कि पूर्ण पुनर्वास और पूर्व पर्यावरणीय कार्य हानिपूर्ति नहीं होगी तब तक विस्थापन नहीं हो सकता। हम तो वही मांगते रहे और हम पर्यावरणीय कार्य भी मांगते रहे पर हम साथ साथ आर्थिक लाभ हानि और विकल्पों की बात भी करते रहे जो हमारी भूमिका पहले से आज तक बनी हुई है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ और आज भी 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां हमारे किसानों ने ढूंढ निकाली, बख्शिश मिले आरटीआई के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तक जाने के बावजूद मध्य प्रदेश ने कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन उनको जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार शपथ पत्र में कहते रहे कोई बाकी नहीं कोई बाकी नहीं, उनको अभी संघर्ष के दौरान जो हजारों महिलाओं का था, जो आदिवासी दलित और किसानों का था, जो पहाड़ पट्टी के साथ मैदानी क्षेत्र का था, क्यों 900 करोड़ का पैकेज घोषित करना पड़ा? कभी किया है किसी बांध में? आज भी उसमें बंदरबांट वो कर रहे हैं तो वो हमारा दोष नहीं है, पर जो लोग वहाँ हैं वो कानूनी न्यायपूर्ण पुनर्वास मांग रहे हैं। और साथ साथ हम लोग गुजरात की जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, जो आज काले झंडे दिखाती है भाड़भूत जैसे गांव में प्रधानमंत्री को, वो इन्हीं मुद्दों पर तो अब जागरूक हो रही है।
सरकार की आलोचना या जो फैसला करने वाले लोग हैं उनकी आलोचना आप करती रही है, मैं चाहता हूँ आप एक थोड़ी सी आत्मालोचना, क्या ऐसा संभव है?
जरूर।
आपने पूरे आंदोलन में बहुत सारी उपलब्धियां आपकी रही लेकिन कई बार आपको सेटबैक भी झेलने पड़े होंगे। जैसे एक बात यह है कि जल समाधि आपने इतनी बार की है, अनशन आपने इतनी बार किए हैं, गांव वालों ने जल समाधियां की हैं, लोग कहने लगे कि अच्छा ये अगर गंभीर होते हैं इस मामले में तो उसका कुछ नतीजा निकलता, बार बार ये एक ही फॉर्म आंदोलन का कितना कारगर साबित होता है?
एक ही फॉर्म बिल्कुल नहीं है, और जल समाधि ले लेते भी तो आज यहाँ होते नहीं, लेकिन नहीं ली क्योंकि उसी समय सरकार ने हम जो शर्त रखे थे वो शर्त मंजूर की और वो केवल एक ही बार हुआ 1993 में। बाद में जब भी हमारे उपवास हुआ या और धरना हुआ या साथ साथ हम लोगों ने कोर्ट से गुहार की, तब मैं अकेली नहीं, मेरे साथ हजारों आदिवासी किसान मजदूर सभी रहे हैं। आज मछुआरों की लड़ाई जारी है, आज हमने महाराष्ट्र में 5 सोसाइटियों को अधिकार लिया, मध्य प्रदेश नहीं देती है तो मछुआरों को भी लड़ना पड़ता है, केवट नाविकों को, दुकानदारों को, किसको नहीं लड़ना पड़ता है? अगर आप पर भी संकट आ जाएगा, नौकरी से हटाया जाना शुरू होगा तो आप भी लड़ेंगे, और एक बार नहीं कई बार सरकार ये करती है तो हमको भी कई बार उतरना पड़ता है।
लोग कहते हैं कि अगर एक तरक्की करने वाले मुल्क को सड़कें भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, स्टेडियम भी चाहिए, 5-स्टार होटल्स भी चाहिए, और वो जमीन किसानों के पास है तो किसानों से तो ली ही जाएगी जमीन, ये एक तर्क है, तो आप क्या कहते हैं?
देखिए गुजरात में आज जो बात फैली है ना, विकास कांडो थयो छे, वही हकीकत है। विकास के नाम पर विकास ही नहीं, विकास के नाम पर राजनेता पागल हो गए हैं और वो विकास को केवल मुनाफाखोरी विकास के रूप में देखते हैं। वो विकास के लिए किसी की भी कितनी भी कीमत देना चाहते हैं जो हमारी अवधारणा नहीं है। और विकास अगर निरंतर होना है, संतुलित होना है, तो जमीन हो, पानी हो, जंगल हो या मेहनत हो, मनुष्य शक्ति हो, इसका इस्तेमाल किस प्राथमिकता के साथ, किस प्रक्रिया के साथ और किस दिशा में होना चाहिए, कौन सी तकनीक से होना चाहिए, इसकी परिभाषा व्यवस्थित सामने आना जरूरी है, तभी विकास की अवधारणा समतावादी होगी।
फिर क्या वजह है मेधा जी, आप जनता के मुद्दे उठाती हैं, व्यापारी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है गुजरात में, आप जब चुनाव में खड़ी होंगी तो आपको वोट देने वाले 5-7-20 लोग होंगे, क्यों आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फेल साबित होते हैं? मैं जनरल एक आंदोलनकारियों की बात कर रहा हूँ, आपकी पर्टिकुलरली नहीं करता।
चुनावी राजनीति के आज के जो हथकंडे हैं, उन हथकंडों में कितनी सत्यता है और उन हथकंडों का आधार क्या है, ये देखेंगे तो जन आंदोलनों के साथी जो उन हथकंडों को अपनाते नहीं है, अपने ही चेहरे सब जगह दिखाना, हमने नहीं लगाए बड़े बड़े पोस्टर। नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी थी जो मुंबई की नॉर्थ ईस्ट थी, शर्मिला इराम की नहीं, और वहाँ गरीब बस्तियों में काम किया था पहले भी सालों तक और अभी तक भी 2005 से, इसलिए वो चुनी थी। लेकिन हमने देखा कि आखिरी 3 दिन और 3 रात में लाइट्स बंद करके जीप में लाकर पैसे बांटे जाते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से जाति जाति बिहारी यूपी वाले और उसमें भी अलग अलग मुशायरों के आधार पर वोटों का अपील किया जाता है, और ये हम नहीं करेंगे ये तय करके अगर पदयात्रा निकालते हैं हमारे जैसे आंदोलनकारी तो हारेंगे नहीं तो क्या। तो मुझे लगता है कि ये चुनावी राजनीति का अनुभव तो लेना चाहिए, लेकिन चुनावी राजनीति में जीतने के बावजूद विधानसभा हो लोकसभा हो उसमें कितने बुनियादी मुद्दे उठते हैं और किन ऊपरी ऊपरी मुद्दों पर केवल एक नादानी बहस चलती है, ये इसका हिसाब भी किसी ने रखना चाहिए।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है अमिता पाटकर से, आप जब आंदोलन में रहती हैं, एक दौर ऐसा भी आया था कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग शामिल हुए थे जिनकी वजह से मीडिया में बहुत जबरदस्त एक उछाल मिला था नर्मदा बचाओ आंदोलन को, ग्लैमर की वजह से अरुंधति रॉय एक नाम है जो आपके साथ खड़ी हुई थी, आज आप उसी जगह खड़ी हैं, अरुंधति रॉय आपके कितने साथ हैं मुझे नहीं मालूम है, ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिए, जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपको क्या महसूस होता है?
मैं क्यों बेईमानी करूँ जब अरुंधति ने हमारे साथ बेईमानी नहीं की है। अरुंधति एक लेखिका है, बहुत गहराई से लिखती है, उसका अपनी सोच है, विश्लेषण है। अरुंधति आज भी भूमिका तो वही मानती है, अर्थात वो गांधी और अंबेडकर, गांधी मार्क्स और माओ, इन सब पर अपनी अपनी सोच बदलते हुए भी सही या पहले से उसकी होगी उसको उजागर कर रही है, जो उसका अपना अधिकार है। हम तो अभिव्यक्ति के अधिकार के पक्ष में हैं, मोदी सरकार जैसे हमारा नहीं है। तो अरुंधति ने जो आज
पहले आपके साथ दिखती थी वो अब आपके साथ
नहीं, अभी वो 8 साल तो बांध रुका हुआ था, तो सब लोगों को घाटी में बुलाने का हम भी नहीं कर रहे थे, हम पर हमला होता है तो हम हटते नहीं है, पर सब लोग हम लोगों को सहन करते हुए हमारे साथ ही चलते रहे ऐसी अपेक्षा हम भी नहीं करते। मतलब सदाशिव अमरापुरकर, श्रीराम लागू जैसे महाराष्ट्र के, या कुमार पंकज जैसे कई सारे कलाकार लेखक सभी हमारे साथ जो जुड़े रहे हैं उनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं, उसकी भी एक मर्यादा होती है, और हम ये मानते हैं कि हमारा फर्ज है, अगर हमारी कमिटमेंट अल्टीमेट है तो हमको तो चलते रहना ही चाहिए, जो साथ तले वो चले, पर एकला चलो रे की हमारी बात नहीं है,
नहीं।
ये भी आप समझिए।
आप सुन रहे थे गुजरात के सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के लिए आंदोलन चलाने वाली मेधा पाटेकर से बातचीत। और खेल समाचारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त।
जी आदर्श जी, आज सबसे पहले बात बिलियर्ड्स की। भारत के पंकज आडवाणी ने आज ISSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के माइक रसिल को हराकर अपने करियर का 17वां विश्व खिताब जीता। उन्होंने पिछले साल बेंगलुरु में भी यह खिताब जीता था, और सबके नजरें थी श्रीलंकाई टीम पर जो इन दिनों भारत का दौरा कर रही है, और 16 तारीख से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का वो पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष एकादश 11 के साथ खेला गया उनका जो अभ्यास मैच था वो आज बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने हालांकि कल 9 विकेट पर 411 रन बनाए थे, लेकिन जिसके जवाब में बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने आज 5 विकेट खोकर 287 रन बनाए। कप्तान संजू सैमसन ने 19 चौके और 1 छक्के की मदद से 128 रन बनाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसका फायदा जरूर श्रीलंकाई टीम को टेस्ट मैच में मिल सकता है।
शुक्रिया आदेश। और अब इससे पहले कि विदा लें, विश्व समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रकाश राज ने कहा है कि अभिनेताओं का राजनीतिक पार्टी से जुड़ना गलत है। राजस्थान के अलवर जिले में पिकअप गाड़ी में गायों को ले जा रहे एक मुसलमान व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। वारदात में एक अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। इराकी सेना का कहना है कि उन्होंने कथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपना आखिरी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। रूसी एक्सट्रीम स्पोर्ट्समैन वालेरी रोजोव की मौत हो गई है। वालेरी रोजोव को बेस जंपिंग में अपने फ्री फॉल के रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमरीकी दूतावास के सामने सैकड़ों लोगों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।